Sûret Mârec. Bismillahirrahmanirrahim. Sâle sâilun biyazâbin vâki. Lil kâferîne leyse lehû dâfi. Minallâhi zil ma'âric. Şuruk kerti hu Allah ke nâm se jo meherban ve rahim karne vâla hai. Ek sâval karne vâle ne is azâb ka sâval kiya jo vâze hone vâla hai. Kâfiron par jise koi hatane vâla nahi. Us Allah ki taraf se jo seedhiyon vâla hai. Jis ki taraf farishte aur ruh chadte hain. Ek din mein jis ki miqdar 50,000 saal ki hai. Fasbir sabran jameela, bas tu achhi tarah sabr kar. Innahum yaraunahu ba'ida, beshak ye sazab ko dur samajh rahe hain. Wa narahu qareeba, aur hum ise qareeb hi dekhte hain. Kya hoga us din? يوم تكون السماء كالمهل, جس دن آسمان مثل تیل کی تل چھٹکے ہو جائے گا. وتكون الجبال كالعهن, اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے. ولا يسأل حميم حميما, اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. حالانکہ يبصرونهم, ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور اپنے کنبے کو جو اس کو پناہ دیتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور وہ زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا. ثم ينجي, تاکہ وہ اسے نجات دلا دے. کیا قبول کیا جائے گا؟ نہیں. کلا انہا لظا, ہرگز یہ نہ ہوگا. یقیناً وہ شعلے والی آنکھ ہے. نزات للشوا, جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے. تدعو من ادبر وتولى, وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ جمع افا او آ, اور جمع کر کر کے سنبھال رکھتا ہے. ان الانسان خلق ہلوا, بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, مگر وہ نمازی. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ, بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہے ہی نہیں. اور کیا خوبی ان لوگوں کی؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں, ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں, ان کو کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. اور وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور جو اپنی امانتوں کو اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں, اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ, یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. اے اللہ, تو ہمیں بھی انہی کاموں کی توفیق عطا فرما. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 35, 1 to 35. ان کا عنوان ہے سودے بازی. آپ نے دیکھا, ہائی لائٹ کیجئے گا ان میں سے آیات کو. آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک. اپنے آپ کو ذرا سوچیے اس جگہ پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کا حال بھی نہیں پوچھے گا. کبھی دنیا میں آپ کسی مشکل میں ہوں, بیمار ہوں, پریشان ہوں, آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کی دوست کو پتہ ہے اور وہ آپ کا حال بھی نہ پوچھے, اور بہت دن کے بعد بات ہو تو ذکر ہی نہ کرے کہ آپ بیمار ہیں, اپنا ہی کو دکھڑا لے کے بیٹھ جائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یُبَصَّرُونَهُمْ, وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے میری دوست مشکل میں ہے, وہ دیکھو پریشان ہے, وہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہی ہے, وہ بے چین ہے, لیکن देखते रहो, हु केयर्स, क्यों? इसलिए कि हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। सूरत अबस में जाके आप पढ़ेंगे अगले पारे में कि उस दिन इंसान भाग रहा होगा। यहाँ देखिए, ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए इंसान सारी जिंदगी अल्लाह को नाराज करता है। जहां भी अल्लाह का कोई कानून टूटता है, अपनी जात बहुत पीछे होती है, पहले दूसरे लोग होते हैं। ये इंसान के वीक पॉइंट्स हैं। लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमी इज़िम बिबनी, पहले तो बेटे को पेश करेगा। दुनिया में आप देखिए कि इन बेटों को पाने के लिए बाज़ दफ़ा इंसान कितने पापड़ पेलता है। बच्चों को पालने पोसने के लिए माँ बाप अपनी खुशियों पे कैद लगा लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कहेंगे, ये मेरे बेटे को ले लो, इसको आग में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। एक एक्सपीरियंस किया गया था बहुत साल पहले, बंदरिया के एक बच्चे को और बंदरिया को एक केज में डाल दिया, पिंजरे के अंदर। तो देखा कि वो माँ प्यार कर रही है, क्योंकि जानवरों में भी अल्लाह ने ममता रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने उस केज के नीचे आग जलाई, हल्का हल्का उसको वार्म अप करना शुरू किया। जब वो गर्म हुआ ना, तो वो बेचैन थी, कभी खुद ऊपर जा रही है, कभी बच्चे को पकड़ रही है, उसको उठा रही है। लेकिन जब उसके बहुत ज्यादा पांव जले, तो उसने अपने उसी बच्चे को नीचे गिरा के उसके ऊपर खड़ी हो गई। अब ये एक दुनिया में एक जानवर की मिसाल थी, क्यामत के दिन तो इससे बहुत ज्यादा गर्म होगी दुनिया। आज भी आप देखिए कि माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसके अंदर जान अटकी रहती है, लेकिन जब माँ खुद बीमार होती है, तो उस वक्त क्या कहती है, ले जाओ इसको, मुझे सोना है। कभी आप कैंसर से स्ट्रगल करते हुए मरीजों को देखा करें, दुनिया में उनको अपने बच्चों से चिढ़ हो जाती है। आप कहते हैं ना, हाय ये क्या सोच रहे होंगे, वो कुछ नहीं सोच रहे होते, उनकी अपनी जान पे पड़ी होती है। हम जब तक अच्छे हाल में होते हैं ना, हमें दूसरों की खुशी और गम भी लगता है। हमें नींद ही आने लग जाए ना, तो हम कहते हैं, अब जाओ तुम अपना दुखड़ा कभी फिर सुनाना, मुझे नींद आ रही है। क्यामत का दिन वो सारे रहम के जज्बे ख़त्म कर देगा जिसकी बुनियाद पे लोग दूसरों के लिए कुछ करें। अल्लाह तआला करे, वह फसीलत ही हिल्लती तूवी कबीला कुंबा फैमिली, मेरा फलां खानदान, मैं फलां से हूँ, वह मन फिल अर्दी जमीन। क्या तन्हाई का एहसास नहीं होता इन आयतों को पढ़ के? उस दिन इंसान वाकई कितना महरूम कर दिया जाएगा कि सबको पकड़ के कहेगा कि अल्लाह इनको डेल दे आग में और मुझे छोड़ दे। यहाँ आप देखिए कि माल की बात हो रही है, गुनाहों में जो बात थी क्या थी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो शख्स था कि जो दुनिया में गफलत में जी रहा था। और जहन्नुम की आग किस किस को पुकारती है, जिसने पुश्त फेरी और चेहरा फेरा, वह जमा फाआ, जमा किया और माल को खैर किया। यानी ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी अमूमन माल के जमा करने में लगी रही, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो अपने आप को इन सारी चीजों से दूर कर गया जो कल उसके काम आने वाली थी। मनी की बातें हो रही है ना, कि जमा करता था और गिन गिन के रखता था। वह जमा फाउ आ, एक तो माल जमा करना, फिर उसको गिन गिन के रखना, और उसका ख्याल ये था कि मैं इस चीज में ही कामयाब हूँ और यही मेरी कामयाबी की वजह है। लेकिन हकीकत यह कि नहीं होती। फिर आप देखिए कि इसमें आपने कुछ ऐसे काम देखे थे कि जिनको करने के बाद फिर जन्नत में इज्जतें मिलेंगी। अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ किस्म के इंसानों का यहाँ तذکرہ कर दिया, एक वो जो जन्नत में जाएंगे और दूसरे वो हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें जन्नतियों में कर दे। फिर फरमाया, फमा लिल्लज़ीना कफरू क़िबलक मुख्तईन अनिल यमीनी वानि शिमाली इज़ीन, बस काफिरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह, क्या इनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ऐसा हरगिज ना होगा। हमने इन्हें इस चीज से पैदा किया जिसे वो जानते हैं, फला उक्सिमु बिरब्बिल मशारिकि वल मगारिब, बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की कि यकीनन हम कादिर हैं इस पर के इनके इवज इनसे अच्छे लोग ले आए और हम आजिज नहीं। बस तू इन्हें झगड़ता खेलता कूदता छोड़ दे, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिले जिसका इनसे वादा किया जाता है। क्या कैफियत होगी उस दिन, यौमा यखरुजून मिनल अजदासि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबि युफिजून, जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे गोया के वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। जालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता था। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 36 से 44, 36 से 44। इन आयतों का टॉपिक है, इनको खेलता कूदता छोड़ दे। हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग भी आयत नंबर 42 को, फजर हुम यहूदू व यलअबू, कब तक, हत्ता युलाकु यौमहुम अल्लज़ी युअदून। दुनिया के सारे मशागिल जो अल्लाह से दूर करने वाले हों, अल्लाह ताला उनको खेल कूद कहता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बामकसद ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और बामकसद ज़िंदगी क्या होती है ये हज़रत नुह से सीखते हैं। इसको पढ़ते हुए आप कोई ऐसा लम्हा जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो कि आपने किसी को अल्लाह के दीन की दावत दी हो और उसने आपको छुटलाया हो, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? उसने कहा रखो अपना दीन अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या फैसला था? उसको और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत को याद रखें। हल्का सा इनके बारे में, 1,000 साल तक की उम्र इनको अल्लाह ने दी, जिसमें से 950 ईयर्स तबलीग की, और सारी तबलीग के नतीजे में 70 से 80 लोग दीन पे आए। तकरीबन हर 9 साल के बाद एक शख्स बनता है। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत देखिए, क्या अल्लाह ने इनका अजर ज़ाया किया? हरगिज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो इससे पहले कि इसके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। क्या होगा? यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा। तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मुअख्खर नहीं होता। काश के तुम्हें समझ होती। काला रब्बी इन्नी दऊतु कौमी लैलन व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे। वइन्नी कुल्लमा दउतुहुम लितग़फिरा लहुम। और मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। कैसा एटीट्यूड है? आज देखिए लोग सुन लेते हैं कम अज़ कम, माने ना माने उनकी मर्जी। ये कौम इतनी अखलाक की गिरी हुई थी कि ये सुनना भी नहीं चाहती थी। आप किसी को बात सुनाने जाएं और अगला कानों पे उंगलियां रख ले, कानों पे उंगलियां तो रख ली, आवाज़ नहीं आई, लेकिन का शक्ल इतनी बुरी लगती है, मुंह पे कपड़ा भी डाल दिया कि हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। फिर ये रब को कहते हैं सुम्मा इन्नी दउतुहुम जिहारा। फिर मैंने इनको बाबा से बुलंद बुलाया और बेशक मैंने इनसे एलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी कहा। और क्या कहा? फकुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। क्या मिलेगा इस्तग़फार करने से? युरसिलिस्समा अलैकुम मिद्रारा। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन। और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बर्तरी का अकीदा नहीं रखते, हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए और इनमें चांद को खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चराग बनाया है और तुमको जमीन से एक खास एहतमाम से उगाया और पैदा किया। सुम्मा युईदुकुम फीहा। फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक खास तरीके से फिर निकालेगा। और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह ने फर्श बना दिया ताकि इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। ये थी आयत नंबर 1 से 20, 1 से 20। इसका उन्वान है नूह ने पुकारा रात को भी और दिन को भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ जो बात हाईलाइट करने के काबिल है वो इस्तग़फ़ार के बारे में, फ़कुल तुस्तग़फ़िरु से लेके 10 से लेके 13, 10 to 13, इन 3 आयतों को हाईलाइट करें। ये है वो चीज़ जो इंसान के लिए खुश रहने का ज़रिया बन सकती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही कि इसके बाद बारिश होगी, तो बास लोग यही कहते हैं कि जब कभी बारिश ना हो तो सलातुल इस्तिस्का के लिए सिर्फ इस्तग़फार की जाए तो वो भी काफ़ी है। हसन बसरी एक बुजुर्ग थे, एक दफ़ा एक शख्स उनके पास आया, कहने लगा कहत साली है, कहने लगे इस्तग़फार करो। वो चले गए, फिर दूसरा आया, कहने लगा फकरो फाका ने घर को पकड़ लिया, बस रास्ता देख लिया, गुर्बत बहुत है। कहने लगे कि इस्तगफार करो। फिर एक और शख्स आया, कहने लगा मेरा बाग खुश्क है। कहने लगे इस्तगफार करो। किसी ने उनसे पूछा कि आप हर एक को इस्तगफार की दावत क्यों दे रहे हैं? कहा इसलिए कि अल्लाह ने कहा है के फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलु समा अलैकुम मिद्रारा। हकीकत यह है कि इस्तगफार का जो लफ्ज़ है ना, बंदे के लिए उसकी मुश्किलात को ख़त्म करने का एक जरिया बन जाता है। पीछे हम पढ़ चुके कि हर तकलीफ़ जो पहुंचती है ना, वो हमारे किसी गुनाह की सज़ा होती है। जब बंदा तौबा इस्तगफार करता है तो वो गुनाह माफ़ हो जाता है। गुनाह माफ़ किया तो बीमारी ख़त्म हो गई। ये ऐसी है कि जैसे आपको किसी खास बदपरहेजी की वजह से कोई बीमारी हो, तो जब आप बदपरहेजी छोड़ते हैं आपकी वो बीमारी भी दूर होने लगती है। इसी तरह यही हालात होते हैं कि जब लोगों को किसी बात के पूछने पर ये कहा जाए ना इस्तगफार पढ़ो, तो लोगों को खुशी नहीं होती। बाज़ लोग आते हैं, अच्छा बड़े हालात तंग है, बड़ी मुश्किल है, बहुत बेचारे कई दफ़ा परेशान होते हैं और कितनी उम्मीदें लेके आते हैं, जी क्या करें, उनको कहा जाए ना इस्तगफार करो। अच्छा ये तो है, और कुछ बताएं कैसे पढ़ें? ऐसे ही पढ़ें, खुला पढ़ें कि नहीं बंद पढ़ें? और इसकी जगह आप उन्हें कहें ना कि कमरा बंद करके अपने आप को तसव्वुर में करें कि आप मछली के पेट में हैं, और वहाँ पानी का पास एक डोंगा रख लें और उसमें अपना हाथ भिगो लें और अपने आप को तसव्वुर में करें, तो कहते ये बड़ा अच्छा वजीफा है। और बाद लोग फिर उस पर भी बहुत सारे सवाल करते हैं कि अच्छा वो ऐसे ही करें वैसा करें। यानी सीधी सी बात है, देखिए हम सबको कुरान पाक जो पैगाम दे रहा है ना, वो ये दे रहा है कि तुम अपनी हालत ठीक कर लो, अल्लाह तुम्हारे हालात ठीक कर देगा। मैं सोचती हूँ कि अगर ईमान वाले को इस बात की समझ आ जाए ना, तो वो कभी किसी के आगे अपना दुखड़ा ही ना खोले। ये तो अपना कपड़ा उठाने वाली बात है कि किया मैंने कुछ गलत है, बात दूसरे की जा रही है। बात ना समझी होती है ना, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो बातें करती हैं, ऐसा है मेरा मियाँ ऐसा है। अब एक दोस्त वो कहती है हाँ वाकई कितने खराब तुम्हें मिले हैं रिश्तेदार और अच्छा शौहर नहीं, वो और जलती पे तेल डालती है। उससे उसको और एहसास होता है कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बड़ी मजबूर हूँ, पिटी फीलिंग होती है, इंसान अपने आप अंडर प्रेशर समझता है और रोना आता है। हालांकि अगर ऐसे वक्त में किसी को ये कहा जाए कि सोचो तुम्हारी क्या वजह थी। मसलन बाज़ ख़वातीन कहती हैं घर में झगड़ा बहुत होता है, लड़ाई बहुत होती है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, सिर्फ ये बताएं कि आखिरी जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह क्या थी? और आखिर ये निकलती है कि फिर मेरे से भी फिर सब्र नहीं हुआ, फिर मैंने भी जवाब दे दिया, फिर मैं भी आज बोल पड़ी, तो मियाँ ने हाथ उठा लिया। हमेशा अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई आजमाइश हो, लेकिन याद रखिए कि 99% जो तकलीफें हम पे आती है ना, उसमें हमारा दखल होता है। ठीक है एक साइड खराब है, हम मानते हैं, ये नहीं मैं कहती कि दूसरी साइड खराब नहीं है, लेकिन हम उसे अवॉइड भी तो कर सकते थे ना। कोई आपकी तरफ चीज फेंकता है तो आप हट जाते, आप खड़े रहे वहीं, तभी तो आपको चोट लगी ना। तो लिहाजा अक्लमंद इंसान कौन है कि जो इन चीजों के पीछे से अपने उजर को तराशे। आप लिख के एक्टिविटी कर सकते हैं, जो मुश्किल है ना आपको लिखें। मसलन अमूमन क्या मुश्किलात होती हैं, आप में से कोई बताएं। बच्चों की होती है, यानी बच्चों की मोस्टली फीस हमारा यही है ना कि बात नहीं सुनते। तो क्या पहले दिन से ऐसे थे? जब आपको रीजनिंग करनी आती है ना, दो चीज़ों को जोड़ें, ये बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, इसका अंतर ये कि या तो मैंने इसकी सही तरबियत नहीं की, या दूसरी वजह ये कि जब मैं जवान थी तो मैंने भी अपनी माँ का दिल दुखाया था, और किसी जगह माँ की पड़ी हुई बद्दुआ रखी हुई है आपके खाने में कि अच्छा तुम देखोगी फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। दो रास्ते हैं, या तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लें या उनके लिए इस्तगफार शुरू कर दें, और अगर दूसरी तरफ कमी है ना कि आपने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, तो इनसे माफ़ी मांग लें। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? माफ़ी, या माँ बाप से मांगें या बच्चों से मांगें। यकीन करें अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, हर लम्हे ये सोचे कि नहीं कसूर मेरा ही था, जब आप अपना कसूर मानेंगे ना तो दूसरा कहेगा नहीं मेरा भी था कुछ, और जब आप कहें ना आपका कसूर था, वो कहेंगे नहीं जी आपका कसूर था, जब आप दूसरे को कहते रहेंगे ना तो अगला आपको कहेगा, एक लम्हे के लिए दिल पे हाथ रख के नहीं मेरा भी कसूर था, तब फील करेंगे कि फौरन उसके बाद दूसरी साइड की तरफ से आपके ऊपर हमला नहीं होगा बल्कि वो आपका दिफा करेंगे। और जिसको ये सोच मिल जाती है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका सिल खोल देता है, और जो ये नहीं सोच रखता उसके गम फिर किसी की दुआओं से भी नहीं दूर होते। तो अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से तौबा करने वाला बना दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस हालत को कि जब कौम ने उनको झुटला दिया, अब अल्लाह ताला के आगे वो फरियाद करते हैं, और वो क्या, काल नूह रब्बी नहुमसौनी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने तो मेरी नाफरमानी की और ऐसों की फरमा बरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ाया, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने के हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना और न वो दरसुआ और यऊ यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना, ये उनके बुतों के नाम थे। पांच ही थे ये भी, पांच तन। और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये लोग बसबब अपने गुनाहों के डबो दिए गए और जहन्नुम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने ना पाया। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़ दे। इन्ना का इंतजर हूँ, अगर तूने इनको छोड़ दिया तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजिरों और ढीठ काफिरों को ही जन्म देंगे। हाँ लेकिन रब्बे फिरली वली वालिदैय वली मन दखला बैती या मुमिना मुमिनम वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तजिदिल जालिमीन इल्ला तबारा। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए हैं और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ाना। ये थी आयत नंबर 21 से 28, 21 से 28। इन आयतों का उन्वान है, इन तिलों में तेल नहीं। हमने हजरत नूह अलैहि सलाम की बद्दुआ का तذکرہ देखा। इसको सुन के शायद दिल में आता हो कि क्यों बद्दुआ की, तो ज़हन में रखने की बात है कि नबी कभी भी जल्दबाजी में बद्दुआ नहीं करते। कभी एक चीज़ होती है, आप उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं, आप उसको ठीक करवाना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, थोड़े दिन वो ठीक रहती है फिर ख़राब हो जाती है, फिर कोशिश करते हैं। जब दो तीन बार आप किसी चीज़ को आजमा लें और वो आपको मुश्किल में डाल दे, उसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो, तो आप कहते हैं अब ये ठीक नहीं होगी, अब इसका ठिकाना यह है कि इसको ट्रैश कर दिया जाए, डंप कर दिया जाए। यही हाल इंसानों का होता है। जब किसी के अंदर जज्ब की कैफियत नहीं रहती, हक की कबूलियत की उम्मीद नहीं रहती उनकी, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ख़त्म करता है। बस लोग सोचते हैं कि अल्लाह लोगों को आग में कैसे डालेगा। मैं खुद भी सोचती हूँ कभी नॉन मुस्लिम्स को, और गलत काम करते हुए देखा जाए अकीदे के तौर पे, ये नहीं कि किसी एक इंसान को पर्सनलाइज करके हम कहें कि ये आग में जाएगा। ऑफ कोर्स हमें इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना हम सोच सकते हैं, हमें नहीं पता कि इस वक्त उसके दिल की क्या हालत है और मौत के वक्त उसकी क्या होगी। लेकिन बिलफर्ज जो एक अमूमी तौर पर हम पढ़ते हैं, और हमारा ईमान है कि जिसने अल्लाह को ना माना या अल्लाह की ना मानी तो बिलाहिर उसको जहन्नुम में डाला जाएगा, तो दिल में ख्याल आता है ना, अल्लाह इनको कैसे आग में डालेगा। तो इसको छोटी सी मिसाल से समझें कि जब आप अपने घर का ट्रैश फेंकती हैं तो आपको अफसोस होता है। जूस तो आपने ले लिया, आप खाली डिब्बा फेंकते हुए कभी अफसोस हुआ, या छिलके फेंकते हुए अफसोस होता है। जो बेकार चीज़ होती है उससे तो जान छुड़ाई जाती है। कोई मस्जिद के इमाम थे, उनके बारे में ये मारूफ था कि जब भी दर्स देते हैं तो ये शिर्क और तौहीद पे देते हैं, यानी एक इनका टॉपिक ही है। लोगों ने एतराज़ किया, लोगों ने कहा कि ये क्या बात है, आप हमेशा शिर्क की बात ही करते हैं और किसी बात पे बात नहीं करते। कहने लगे अच्छा। एक दिन आए, लोगों को एक कहानी सुनाई, कहने लगे कि वहाँ तुम्हें पता है कि फलां शख्स था और कब्र पे जाके किसी से मांग रहा था। लोग सुनते रहे, अच्छा हाँ बहुत बुरी बात थी, बहुत बुरी बात थी, चुप रहे लोग, बहुत दे वॉज वेरी कूल। फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक और कहानी सुनाई किसी की, तुम्हें पता है कि फलां, यानी शिर्क की जो मुख्तलिफ कैफियात होती है ना वो सुनाई। लोग जो थे ना वो चुप करके सुनते रहे, हाँ ठीक है। एक दिन आके उन्होंने एक कहानी सुनाई तुम्हें, कहा कहेंगे तुम्हें पता है फलां शख्स है उसने जिना किया, बदकारी की, और फहाशी की, तो अच्छा पकड़ो इसको मारते हैं। जोश में आगे लोग कहेंगे देखा, इसलिए मैं तुम्हें तौहीद के दर्स देता हूँ कि इतने दिन मैं तुम्हें किसी के शिर्क की बातें सुनाता रहा और तुम ठंडे रहे, और आज जिना की बात की तो तुम जोश में आ गए। इसका तो तुम्हें तौहीद का मतलब ही नहीं पता। और हकीकत है, आज भी देखें कि हम किसी को शिर्क करता देखकर इतने गुस्से में नहीं आते जितना उसके बाद वाली चीज़ों को देख के गुस्से में आते हैं। हमें खुद ही नहीं पता। कोई हमारी माँ को ना माने ना, या हमारे सामने हमारी माँ को गाली दे, फिर हम देखेंगे कि हम उसके साथ कैसे प्यार से रहते हैं। और जिससे दुश्मनी होती है ना, इंसान तो उसका दिया हुआ भी नहीं रखता। अच्छे दिनों में जो चीज़ें ली होती है ना, कभी मंगनी टूट जाए या रिश्ता छूट जाए या कभी और कोई इख्तियार हो, तो लोग कहते हैं ये सूट अब मैं कभी नहीं पहनूंगी, क्यों, ये फलाह ने दिया था। एक तो खुद दिल चढ़ गया, और दूसरा ये कि अगर वो देख लेगा तो क्या कहेगा, देखो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहन रहा है। इंसानों की कमजोरियां, हालांकि किसी को क्या कह रहा है, इस चीज से क्या लगता है, ये तो बेजान चीजें हैं ना। लेकिन हम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा मामला करें, और जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के दुश्मनों के तौर तरीकों को हम अपनाएं, उनकी चीजों को देखें हमें कुछ ना हो। हम सोचें जब हम किसी ऐसी जगह के आगे से गुजरते हैं जहां शिर्क होता है, आप उसका नाम कुछ भी रख लें अपनी समझ के लिए, वो कोई मंदिर भी हो सकता है, वो कोई चर्च भी हो सकता है, और वो कोई ऐसी मस्जिद भी हो सकती है जिसके अंदर से शिर्क प्रमोट किया जाए, हमें कितना गुस्सा आता है। शायद हम इसको एक नॉर्मल लेते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला का कितना हौसला है कि इतनी लोगों को मोहलत दे देता है कि जो तुम मेरे खिलाफ भी बातें कर लो, लेकिन जब मैं पकड़ूंगा तो उस वक्त तुम्हें फिर कोई बचाने वाला ना होगा। तो दुआ करते हैं कि जो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस्तकामत दी हमें भी दे। आज तो वो हालात ही नहीं, आज तो लोग फिर भी सुन लेते हैं बेचारे। उस दौर में तो लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और इसीलिए इनका नाम, किसी को पता है हजरत नूह का सही नाम? इनका नाम था अब्दुल शकूर। और नूह क्यों नाम पड़ा? अल्लाह के खौफ से नोहा करने की वजह से बहुत रोया करते थे, कहते कि इनके चेहरे के ऊपर रोने की वजह से निशान पड़ गए हुए थे, इतना रोते थे। असल में ये अब्दुल शकूर थे। बड़ा दिल चाहता है इनको मिलने को। मेरे से में आते हैं बड़े बूढ़े सफ़ेद बालों वाले, दुबले पतले लंबे, और मेरे जहन में इनके बारे में आता है कश्ती बनाते हुए, बुढ़ा बाबा एक कश्ती बना रहा है। आपको कभी दीन के नाम पे किसी से इल्ज़ाम या ताना या ऐसी कोई बात मिले ना कि लोग आपका दिल दुखा दें, तो आप इनमें से किसी नबी की कहानी पढ़ लें, ख़ासतौर पे ये जो स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट बुक्स होती हैं कससुल अंबिया उर्दू में, पढ़ा करें और इसके अंदर से अपने लिए अमल लेंगे, तो वही बात है कि इनकी हालत को देख के आप लगेंगे हमारे साथ तो वो बात ही नहीं, हमें तो आज तक एक पत्थर नहीं पड़ा दीन की वजह से। कभी कुछ बुजुर्गों को देखा करें, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनके पास बस एक ही चीज़ रह जाती है और वो यादें। वो जहाँ कोई आता है बैठ के अपने पोतों की तस्वीरें दिखाएंगी, ये मेरा नवासा है, ये मेरा बच्चा है, ये तुम छोटे थे, तुम बड़े थे, तुम ऐसे थे। मोहब्बत होती है ना, आपको जिससे मोहब्बत होगी ना, बात बे बात उसका तذکرہ शुरू कर देंगे। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला को अपने नबियों से बड़ी मोहब्बत है।